Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jinitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि सत्संग ये सबसे मूल्यवान चीज है सारी दुनिया में। इससे अधिक कोई मूल्यवान वस्तु हम नहीं पाएंगे, न धन, न ऊंचा जन्म, न सौंदर्य, न अच्छी बुद्धि, प्रतिष्ठा समाज में, ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान के भक्तों का संग है। यही है सत्संग, जो संग हमें सत मार्ग में ले चलता है, सत्य के पथ पर। इसके अतिरिक्त जो भी संग है उसे हम असत संग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो भी चीजें अस्थाई हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, वो सब असत्य हैं। इस दृष्टि से नहीं कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, परंतु इस दृष्टि से कि वो स्थायी रूप से नहीं रहते, उनका सृजन होता है, थोड़े समय के लिए वो रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर का भी ऐसे ही होना है। शरीर का जन्म हुआ था, थोड़े समय के लिए हम जीवित रहेंगे, फिर शरीर का नाश होगा। दुनिया में किसी भी वस्तु को देखिए, यही बात है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की भी गति यही होती है, बारंबार सृजन पालन संहार, पुनः सृजन पालन संहार। ऐसे एक अनंत चक्र है जो चलते रहता है। तो इसलिए इस संसार को असत्य कहा गया है। और ऐसे स्थान में जब नित्य जीव या आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में अटक जाता है तो ये एक बहुत कष्टप्रद अवस्था हो जाती है। भगवद गीता का प्राथमिक उपदेश या संदेश यही है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा अमर है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि तीन ही वस्तुएं सत्य हैं, वो हैं भगवान, दूसरे है आत्मा, और तीसरी बात है भगवान और आत्मा के बीच में जो प्रेम का संबंध है। तो इस प्रेम के संबंध को पुनः स्थापित करना यह सतमार्ग है। और जिस संग में आके हमें इस सतमार्ग में चलने के लिए ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वो संग है सत्संग। दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह हमें वास्तव में सत्संग प्राप्त होता है। साधारणतः तो सब जगह है असत्संग ही मिलता है। जहां भी जाएं वहां तरह तरह के संसार की बातें होती हैं, और भगवान की बातें होती भी हैं तो एक ऐसा स्वरूप धारण करती है, करते हैं ये ऐसी चर्चाएं कि उसमें ज्ञान का प्रकाश न होकर घृणा की गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आजकल धर्म ही बदनाम हो चुका है। कई ऐसे लोग कहते हैं कि हमें धर्म ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं। परंतु धर्म घृणा का, द्वेष का कारण नहीं है, अधर्म द्वेष और घृणा का कारण है। जब हमारे धर्म को हम सही तरह से नहीं समझते हैं, भगवान को ठीक से नहीं जान पाते हैं, तभी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक छोटी सी कहानी है जो हम पाठशाला में हमने पढ़ी थी जब हम बहुत छोटे थे, और ये कहानी बहुत अच्छी है और आजकल की जो विडंबना है या जो परिस्थिति है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी टीका है, और अनेक जगह इस छोटी सी कहानी को हम सुनाते रहते हैं। एक बार हुआ ये कि 6 अंधे लोग थे, वो जानना चाहते थे कि ये हाथी क्या चीज है। तो उन्होंने सुना था कि राजा के पास हाथी है, तो राजा के पास जाकर निवेदन किया कि हम क्या हाथी के पास जा सकते हैं। तो राजा ने अनुमति दे दी। अब ये 6 लोग चले गए और वहां पे जाके ये निर्णय करना चाहते थे कि हाथी ये किस तरह का पशु है। तो एक पहले अंधे व्यक्ति ने जाके हाथी के पैरों को पकड़ लिया और आलिंगन किया और कहा कि मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि हाथी क्या चीज है, हाथी एक पेड़ के समान है। दूसरा अंधा आदमी वो हाथी के नीचे गया और नीचे जाकर हाथी के पेट के ऊपर उसने अपने हाथ रख दिए और कहा, नहीं नहीं मेरे मित्र, तुम्हारी गलतफहमी हो गई है, हाथी पेड़ की तरह नहीं है, हाथी एक ढोलक के समान है। तीसरा अंधा आदमी ये हाथी के पीछे की ओर चला गया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली और कहने लगा, अरे तुम दोनों गलत हो, सत्य मेरे से सुन लो, सत्य तो ये है कि हाथी एक रस्सी के समान है। चौथा जो है वो हाथी के सामने आया, उसने हाथी की सूंड पकड़ ली और हंसकर कहने लगा, अरे मेरे मित्रों तुम तीनों ही गलत हो, मैं बताता हूं कि सत्य क्या है, हाथी एक सांप के समान है। अब पांचवा जो अंधा व्यक्ति था वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाके हाथी के कानों का स्पर्श उसने किया और जोर से हंस के कहने लगा, अरे तुम चारों ही गलत हो, मुझसे सत्य सुनो, हाथी एक पंखे के समान है। और फिर जो छठा अंधा व्यक्ति था उसने जाके हाथी के दंशों को पकड़ लिया और फिर कहा, नहीं नहीं मैं बताता हूं, हाथी जो है ये एक अस्त्र के समान है। ऐसे इन 6 अंधे लोगों में बहस होने लगी, जोर जोर से आपस में बहस करने लगे, यहां तक कि मुक्का प्रहार तक पहुंच गए, मैं सही हूं तुम गलत हो। और तब तक वो हाथी का देखभाल करने वाला एक माहूत था, वो हंस रहा था उसने झगड़ा रोक दिया सबका, कहा भाई देखो तुम छह के छह अपने दृष्टि से सही हो परंतु पूर्णतया सही नहीं हो। तुमने हाथी का केवल एक अंश का स्पर्श किया है, संपूर्ण हाथी क्या चीज है तुम नहीं जान सकते। तो सुनो मैं बताता हूं। फिर उन्होंने बताया कि देखो हाथी ऐसे होता है। तो ठीक उसी तरह से इस दुनिया में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, और हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है, और इसलिए तुम मेरे धर्म को मानो, अन्यथा मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगा, प्रहार करूंगा। तो इस तरह का एक वातावरण निर्माण हो चुका है। और जब युद्ध ऐसे सब हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई धर्म से दूर ही रहना अच्छा है, या तो फिर वो कहते हैं चलो अपने घर में ही अपनी हम भक्ति करें, जो भी कुछ करें। तो इस तरह से लोग निराश हो रहे हैं। वास्तव में निराश होने का कारण नहीं है, भगवान ने तो हमें उनको जानने का रास्ता दिया है। जितने भी धर्म हैं उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इस तरह का धर्म है, उस तरह का धर्म है, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है। परंतु साथ साथ ज्ञान स्पष्ट रूप से भी हमारे पास होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टीकरण किया है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये संसार क्या चीज है, हमारा संबंध भगवान से क्या है, संसार का संबंध भगवान से क्या है, हमारा संबंध संसार से क्या है। इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण बड़े सुचारू रूप से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है। श्रीमद् भागवत नाम के शास्त्र को तो आपने सुना ही होगा। जब सूत गोस्वामी नाम के एक संत नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां अनेक ऋषि इकट्ठे हुए थे, बड़े चिंतित थे कि अब द्वापर युग का अंत है, अब इसके बाद कलयुग आने वाला है, अब कलयुग में बहुत बुरी अवस्था होने वाली है लोगों की, और बहुत झगड़े होंगे, बल्कि ये कलयुग जो है ये कलह का युग होगा। कलह अर्थात युद्ध, झगड़े। और आजकल हम देख ही रहे हैं, हमारे युग में झगड़े होते रहते हैं, घर घर में झगड़े होते हैं, घरों के बीच में, समाजों के बीच में, देशों के बीच में, सब जगह झगड़े हो रहे हैं, गलत फहमियां हो रही हैं, मतभेद हो रहे हैं। कभी कोई कारण बड़ा होता है, कभी कोई कारण छोटा होता है, और कभी बिना कारण ही झगड़े होने लगते हैं। तो ये कलह का युग है। तो ये बड़े बड़े संत थे, बहुत सारे संत इकट्ठे हुए थे, उनका हृदय करुणा से भर गया था। तो वो सोच रहे थे कि आने वाले युग के लोगों के लिए क्या किया जाए, संसार के हित के लिए हमें कुछ कदम उठाना चाहिए। निस्वार्थ थे वो, केवल जगत का हित चाहते थे। और उस समय सूत गोस्वामी वहां पर आए। अब सूत गोस्वामी उस स्थान पे उपस्थित थे जिस स्थान में शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को की थी, जबकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। सूत गोस्वामी ने सारा भागवत सुना था शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। और अब जब वो भ्रमण करते करते नैमिषारण्य पहुंच गए तो इन संतों ने उनसे निवेदन किया कि आप हमें कुछ श्री कृष्ण के बारे में बताइए। और उनका प्रश्न था कि अब श्री कृष्ण तो चले गए स्वधाम, उनका तिरोभाव हो गया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने तो कह दिया है भगवद गीता में कि धर्म की संस्थापना करने हेतु वो समय समय पर यहां प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा उन्होंने धर्म की स्थापना तो कर दी, परंतु वो चले गए। अब जब श्री कृष्ण चले गए तो अब धर्म का पालन कौन करेगा, धर्म के विषय में मार्गदर्शन दुनिया को कौन करेगा, और वो धर्म ज्ञान आदि को साथ में लेकर चले गए, तो अब आने वाले युगों के युग के लोगों के लिए क्या उपाय है फिर? तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को दुनोदितः। वो कहने लगे कि अब जबकि श्री कृष्ण ज्ञान धर्म आदि के साथ स्वधाम लौट गए हैं, उन्होंने यहां एक ग्रंथ छोड़ा हुआ है, ज्ञान का भंडार, भक्ति का भंडार, जिसे भागवत पुराण कहते हैं या श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और इस युग में, आने वाले युग में कलौ नष्ट दृशामेश, इस कलयुग में लोगों की दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी, और ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होने वाले कलयुग के लोगों के लिए ज्ञान का प्रकाश देने के लिए अभी अभी अधुना उदित है, अभी अभी इस सूर्य रूपी श्रीमद् भागवत का उदय हुआ है। तो श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसके ज्ञान को पाकर, जिसको सुनकर, जिसका पाठ करके हमारे हृदय में जितने भी भ्रांतियां हैं, जितने भी गलत फहमियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही ऐसे कहा गया है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात्, कि परम सत्य कौन है। शुरुआत में ही परम सत्य की परिभाषा दी गई है, परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। सब कुछ उत्पन्न होता है अर्थात सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसा कोई भी भाग नहीं है सृष्टि का जो कि भगवान से उत्पन्न नहीं होता है। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कौन होते हैं, तो इसका उत्तर है कि भगवान वो हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। और भगवत गीता में भी बारंबार भगवान श्री कृष्ण अपनी ही पहचान इस तरह करके देते हैं, एतत् योनीनि भूतानि, वो कहते हैं समस्त योनियों के, समस्त सृष्टि का उद्गम मैं हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विताः। ये भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, इन सब का उद्गम मैं ही हूं हे कृष्ण, हे अर्जुन। और जो व्यक्ति इस सत्य को भली भांति जानता है वो मेरे शरण में आके भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है। तो जब हम अन्य धर्मों के लोगों को पूछते हैं कि आप बताइए भगवान कौन है, और यदि वो कहते हैं कि हमारी राय में भी परम सत्य एक है और उनका नाम इस प्रकार से है, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं है उस बात को स्वीकार करने में। ऐसा नहीं है कि आसमान में कोई हिंदू भगवान है, कोई मुसलमान भगवान है, कोई ईसाई भगवान है, जो आपस में युद्ध कर रहे हैं कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा तो नहीं है ना। परम सत्य तो एक ही हो सकते हैं ना। तो यदि परम सत्य एक ही है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, तो फिर उसमें क्या समस्या है? क्या हम भगवान को केवल भाषा और देश काल आदि से सीमित रख सकते हैं? तो भगवान कृष्ण को हम भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि शास्त्रों में उनका उल्लेख है, स्वयं भगवान अपना पहचान करा के देते हैं, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में आदि। और यदि कुरान में कहा जाए कि अल्लाह भगवान है, और बाइबल में कहा जाए कि यहोवा भगवान है, तो हमें इसमें इसे स्वीकार करने में समस्या नहीं है। परंतु भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में उसी परम सत्य के बारे में जो जिस गहराई में ज्ञान दिया हुआ है, जिस मधुरता से उनका वर्णन किया गया है, ये अद्वितीय है, अतुलनीय है। परम सत्य एक व्यक्ति है, वो केवल एक निराकार ज्योति नहीं है जिसका पालन हमें करना है, जिनको हमें पाना है। जिस तरह से सूरज की पहचान यदि हमें करनी हो, सूरज के बारे में जानकारी हमें लेनी हो, तो हमें सूरज के हर भाग को जानना चाहिए। सूरज की किरण है, सूरज का गोला है, और सूरज के भीतर बैठने वाले नियंता जो सूर्य देव हैं, वो भी हैं। सूर्य देव की जानकारी यदि हमें पूर्णतया चाहिए तो तीनों को जानना चाहिए। उसी तरह से केवल निराकार को जानेंगे तो हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। ये गलत भी नहीं है, परंतु पूर्ण सत्य भी नहीं है। इस तरह से जगह जगह जब लोग कहेंगे मेरी धारणा में भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं, तो उनसे हम निवेदन कर सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत पढ़िए और देखिए कि कैसी एक विशाल धारणा भगवान की है, परम सत्य की दी गई है ऐसे शास्त्रों में। तो ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में हम जाना चाहते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान जो भगवान होकर भी भगवान होना पसंद नहीं करते हैं, जो वृंदावन में आके एक साधारण ग्वाल बाल की लीला करते हैं, एक साधारण बच्ची की तरह माखन चुराते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, गायों को चराते हैं, ऐसे भगवान के हम भक्त हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान जब एक साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं तो उनकी लीलाएं बहुत ही मधुर मानी जाती हैं, मधुर हो जाते हैं। देखिए, एक साधारण बच्चा भी बहुत आकर्षक होता है सबके लिए। किसी के घर में जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो घर में बातचीत बच्चे के बारे में ही चलती है 24 घंटे। कोई अतिथि घर में भी आते हैं तो वो भी चर्चा बच्चे के बारे में ही चलती है, उसकी तोतली बोली के बारे में, आज उसने क्या किया, कल उसने क्या किया। एक साधारण छोटा बच्चा भी इतना आकर्षक हो सकता है सबके लिए। तो सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण जब एक बालक के रूप, बच्चे का रूप धारण करके आते हैं, तो वो कितने आकर्षक होंगे इसकी कल्पना मात्र हम कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान को प्रेम करना, उनके प्रति हमारे हृदय में आकर्षण जागृत करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसे भक्ति कहते हैं, ये है भक्ति योग का पथ, और यही श्रीमद् भगवत गीता का सार है, उद्देश्य है। भगवत गीता में अवश्य अनेक पथ बतलाए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, तरह तरह के योगों का वर्णन है। परंतु भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से हे कृष्ण, वो योगी श्रेष्ठ है जो सदैव मेरी प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, जो बड़े प्रेम से मेरा चिंतन मनन सदैव करता है, ये मेरा मत है, श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन चार प्रकार के योग पद्धतियों में भक्ति योग का पथ ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण घोषणा करते हैं। जिस प्रेम को हम संसार में अनादिकाल से अनेक जन्मों में ढूंढते आए हैं, जिस सुख को हम आज भी ढूंढते रहते हैं परंतु नहीं पाते हैं, जिस ज्ञान के पीछे भी हम सब इतने समय से घूम रहे हैं पर जिसको हमने प्राप्त नहीं किया है, ये सारी चीजें हमें भगवान श्री कृष्ण में प्राप्त होंगी, उनकी भक्ति में प्राप्त होंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन भक्ति का जीवन है, प्रेम का जीवन है, इसमें कोई घृणा और द्वेष के लिए स्थान नहीं है। ऐसे भक्ति के पथ को स्वीकार करके हमारे हृदय में जितने भी कलमश हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और सच्चा प्रेम जागृत होता है भगवान के प्रति। जब तक भगवान से हम प्रेम नहीं करेंगे, अन्यों से हम सही प्रेम नहीं कर पाएंगे। भारत में एक कहावत है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आपने सुना होगा कि मनुष्यों की सेवा करने से हम भगवान की सेवा करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सही सिद्धांत नहीं है। सही सिद्धांत बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। माधव सेवा ही मानव सेवा है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त जगत संतुष्ट हो जाएगा, सारे जगत का कल्याण होगा। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में एक बात हमें बताई गई है कि येन केन प्रकारेण, कैसे भी क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करो भक्ति के द्वारा। एक बार जब पांडव वनवास में थे, वन में थे, काम्यक वन में, आज जो ब्रजभूमि में काम्यक वन भाग है उसमें थे, और उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि का नाम तो आप सबने सुना होगा, बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, भगवान के भक्त नहीं है, वो एक तपस्वी हैं, अष्टांग योगी हैं, और योग अभ्यास के द्वारा उनकी कई सिद्धियां हैं, और वो जाने जाते हैं अपने क्रोध के लिए। जब वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं तो तुरंत ऐसा श्राप दे देते हैं कि सभी लोग घबरा जाते हैं। जब भी दुर्वासा मुनि आया करते थे कहीं पे, तो लोग डर डर के उनकी सेवा करते थे कि कहीं ये हमें श्राप देकर न चले जाएं। परंतु जितने जल्दी वो क्रोधित होकर श्राप देते थे, उतने ही जल्दी वो सेवा से प्रसन्न भी होते थे और वरदान भी प्रदान करते थे। तो अब दुर्योधन का स्वभाव तो आप सब जानते हैं, कपटी स्वभाव था, सीधा स्वभाव तो था नहीं। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये पांडव जो हैं, ये तो मेरे प्रगति और भोग के रास्ते में कांटे बन चुके हैं। थोड़े समय के लिए कांटों को मैंने तो उखाड़ के फेंक दिया, अब उनको जंगल तो भेज दिया, परंतु थोड़े वर्षों के बाद ये लौट के आ जाएंगे और फिर मुझे उनको राज लौटाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तो तैयार नहीं हूं। तो यदि पहले से ही किसी निमित्त के द्वारा किसी को यंत्र बना के उनको जंगल में ही खत्म किया जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर युद्ध की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे मुझे राज्य मिल जाएगा। तो जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए तो दुष्ट दुर्योधन ने सोचा कि अच्छी बात है, चलो दुर्वासा मुनि का भी ऐसे हम उपयोग करेंगे। तो देखिए, दुष्ट लोग जो होते हैं वो साधुओं का दुरुपयोग करने से भी हिचकिचाते नहीं है। तो दुर्वासा मुनि की इतनी अच्छी तरह से सेवा की दुर्योधन ने कि दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। कहो वत्स, क्या सेवा चाहिए, क्या क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो थोड़ा नाटक करना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि मेरे बेचारे भाई वो सब जंगल में हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो उन्हें आपका संग मिले, तो आप कृपया वहां जाकर उनको संग दीजिए। वो इस समय हमने सुना है काम्यक वन में है, और आप दोपहर के समय जाइए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है। तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए पांडवों के पास। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा, प्रसन्न तो हुए परंतु साथ साथ चिंतित भी बहुत हो गए। क्यों? क्योंकि जब अतिथि हमारे घर आते हैं, भले हम जंगल में क्यों न रह रहे हों, उनका उचित स्वागत करना आवश्यक है, अन्यथा ये अपमान माना जाता है। और स्वागत का एक हिस्सा ये होता है कि उन्हें हमें भोजन खिलाना चाहिए, और उस समय भोजन तो उनके पास कुछ था नहीं, जंगल में रह रहे थे ना। उनके पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव की भेंट थी, द्रौपदी के पास आ गई थी, और सूर्यदेव ने यह वरदान दिया था कि इस पात्र में जितना चाहे आपको अन्न मिल सकता है, दिन में एक बार लेकिन, और जब द्रौपदी तुम खा लोगी अपना प्रसाद या भोजन पा लोगी, उसके बाद उस दिन के लिए ये अक्षय पात्र कुछ भी भोजन उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ऐसे हुआ था कि द्रौपदी सदैव अंत में भोजन लिया करती थी, क्योंकि सबको संतुष्ट कर देती, उसके बाद फिर वो भोजन ले लेती, ताकि उसके बाद यदि पात्र खाली भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। क्योंकि पांडवों के साथ में कई ब्राह्मण ऋषि मुनि आदिगण रहा करते थे, तो अनेकों को खिलाना पड़ता था। तो अब दुर्वासा मुनि उस समय वहां पहुंचे जबकि द्रौपदी ने भोजन ले लिया था, और युधिष्ठिर महाराज को यह पता था कि द्रौपदी खा चुकी है, तो अब क्या करते। तो युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत तो कर लिया और कहा, मुनिवर आइए, हमारा अहो सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए, तो कृपया बैठिए, हमारे साथ प्रसाद पाइए। अब मुंह से शब्द निकल तो गए कि प्रसाद पाइए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज मन ही मन में चिंतित थे कि प्रसाद लाएं कहाँ से, हम तो जंगल में रह रहे हैं, थोड़े कंद मूल फल फूल हम कुछ ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा, तब तक आप कृपया नदी में स्नान करके आइए और तब तक हम भोजन तैयार रखते हैं। और फिर सारे पांडव पांचों भाई बैठे कि अब क्या किया जाए, द्रौपदी देवी भी वहां पर थी कि द्रौपदी अब क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने कहा, अरे मैंने तो भोजन ले लिया, तो अब क्या करना चाहिए, तो कोई तो उपाय ढूंढना चाहिए। तो पांडव जो है बड़े चिंतित रह गए, सब जानते थे कि दुर्वासा मुनि का क्रोध कैसे होता है। तो उस समय द्रौपदी देवी जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी, पांडव सारे पांचों के पांच अच्छे भक्त थे, तो द्रौपदी देवी ने श्री कृष्ण को जोर से पुकारा, ऐसे निस्सहाय पुकार से भगवान आकृष्ट होते हैं, भगवान हमारे ऐसे ही निस्सहाय पुकार को चाहते हैं। यदि निस्सहाय पुकार न हो तो भगवान फिर अपना समय लेते हैं आने के लिए। तो द्रौपदी देवी की पुकार को सुनकर श्री कृष्ण जो कि द्वारका में थे उस समय, तुरंत वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि अरे द्रौपदी, क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने। द्रौपदी देवी को आश्चर्य हुआ कि अरे कृष्ण आप आ गए इतने जल्दी। हाँ हाँ, जब भी मेरे भक्त बुलाते हैं मैं तो तुरंत उपस्थित हो जाता हूँ। तो फिर द्रौपदी देवी ने बताया कि देखो ऐसी समस्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे कोई समस्या नहीं, देखो वहां कोई अन्न है कि नहीं, थोड़ा सा अन्न मुझे तो दे दो। तो द्रौपदी देवी ने कहा कि कुछ अन्न तो है नहीं, मैंने तो भोजन पा लिया, फिर भी देखो देखो। और द्रौपदी ने देखा कि उस अक्षय पात्र के अंदर एक कण प्रसाद का बचा हुआ था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे वो एक कण दे दो। तो फिर उन्होंने एक कण दे दिया। श्री कृष्ण ने उस एक कण को चख लिया और कहने लगे, वाह बहुत संतुष्ट हुए हम, प्रसाद बहुत स्वादिष्ट था। और उधर दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ, वो कभी अकेले नहीं जाते थे, साथ में जाते थे 10,000 शिष्य। तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ में वो वहां स्नान कर रहे थे, अपना संध्या वंदन आदि कर रहे थे। अचानक दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को ऐसे अनुभव हुआ कि मानो उन्होंने हरेक ने 10 लोगों का भोजन पा लिया हो। सबका पेट इतना अचानक भर गया कि दुर्वासा मुनि इधर उधर देखने लग गए अपने शिष्यों की ओर कि क्या हो गया, पेट इतना भर गया, अब क्या किया जाए। तो आपस में दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों के साथ चर्चा करने लगे, अब हम युधिष्ठिर महाराज को कैसे मुंह दिखाएं, उन्होंने तो इतनी बड़ी दावत तैयार की होगी हमारे लिए। तो चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि चलो यहां से हम शीघ्रातिशीघ्र निकल जाते हैं। और फिर वहां से वो निकल गए। उस दौरान युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव भीम आदि को भेजा कि भाई मुनिवर को ले आओ, और ये पीछे पीछे आ रहे हैं, अरे दुर्वासा मुनि जी मुनिवर आइए आइए, और ये भागे चले जा रहे हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण साबित कराना चाहते थे कि देखो यदि हम श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सारी दुनिया संतुष्ट होगी, और हमें किसी चीज को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कि जिनको संतुष्ट करने से संपूर्ण जगत संतुष्ट हो जाता है, हैं भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से हमारे जीवन के लिए भी यही एक सूत्र है, ये न केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करके उनके ऊपर निस्सहाय एक निर्भरता जागृत करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा ये संसार में सभी को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। तो खैर, यदि हम माधव की सेवा करेंगे, श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तो हमें ये ज्ञान होगा कि अन्यों की सेवा कैसे की जा सकती है। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में स्वार्थ रहेगा, सूक्ष्म तरह से स्वार्थ हो या तो फिर स्थूल रूप से भी हो, कुछ न कुछ स्वार्थ रहेगा। परंतु जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो निस्वार्थी होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करके फिर वो समस्त दुनिया की सेवा कर सकते हैं, और उनकी सेवा वास्तविक सेवा होती है। तो ये है भक्ति का पथ। और अन्य जितने भी योग पद्धतियां हैं उनका उद्देश्य भी है कि अंततः वो भक्ति तक पहुंचे। कर्म का उद्देश्य है कि ज्ञान की अवस्था में पहुंचे, ज्ञान का उद्देश्य है कि वो ध्यान में परिवर्तित हो, ध्यान का उद्देश्य है कि हम भगवान से प्रेम करें, अर्थात हम आ जाते हैं भक्ति की ओर। इसलिए भगवान के भक्ति का पथ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और जितने भी हमारे कर्म हैं और जो भी कर्म बंधन है वो भी नष्ट हो जाता है भक्ति के द्वारा। कर्म सिद्धांत का वर्णन भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है कि जैसे करनी वैसे भरनी, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके फल हमें भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्मों के अच्छे फल सुख के रूप में आते हैं, बुरे कर्मों के बुरे फल जो दुख के रूप में आते हैं। इस तरह से अनादि काल से हम सुख और दुख को भुगतते आए हैं। और ये सुख और दुख जो संसार में होता है ये क्या है? ये केवल हमारे पूर्वकृत कर्मों के फल हैं बस। और यही है प्रारब्ध, यही है भाग्य, यही है किस्मत। तो हमारे भाग्य के लिए, हमारे जीवन के दुखों के लिए किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बस हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। परंतु इन सारे कर्मों को हम बदल सकते हैं भक्ति के द्वारा। तो ये भक्ति जहां हमें मिल जाता है उसी स्थान में हमें जाना चाहिए, वो है भक्तों का संग। तो प्रवचन शुरू करते समय मैंने ये बताया था कि सत्संग कितना महत्वपूर्ण होता है, कि हमें सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग यही है जिस संग में आकर हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पथ में आगे चल सके। एक बार दो मित्र थे, अनेक वर्षों के बाद मिले और फिर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो बातचीत करने के बाद फिर एक ने कहा, देखो वहां एक सत्संग हो रहा है, एक कोई साधु आए हैं और भगवद गीता के ऊपर वो प्रवचन कर रहे हैं, तो हम उस कथा को सुनने जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो। तो मित्र ने कहा, देखो वहां एक शराब का दुकान खुल रहा है और वहां पे आज उद्घाटन के समय सभी को मुफ्त शराब बांट रहे हैं, तो हम भी वहां जाके कुछ भाग ले रहे हैं उस उद्घाटन के कार्यक्रम में। तो दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे चले गए, एक सत्संग की ओर, दूसरे असत्संग की ओर चले गए। अब कई सालों के बाद ये फिर से मिले। अब हुआ ये उस दौरान कि जो व्यक्ति उस शराब की दुकान के उद्घाटन में या उसमें गया था कार्यक्रम में, वो उन लोगों के संग में पड़ गया और सारे जो पाप हैं वो सब करने लगा। शराब पीना, जुआ खेलना, तरह तरह के और गलत काम करते बैठ गया। परंतु हुआ ये दैव से कि अपने व्यवसाय में उसकी बहुत प्रगति हो गई, खूब धन उसने कमा लिया, बहुत ही कम समय में अधिक धन कमा लिया और समाज में एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। समाचार पत्रों में उसके तस्वीरें आदि आया करती थी, और उसके पास बड़ा बंगला हो गया, कई गाड़ी हो गए, और उधर दैव से हुआ ये दूसरे व्यक्ति के साथ, वो बेचारा भगवत गीता प्रवचन सुनने गया था, और उसके बाद हुआ ये कि उसके व्यवसाय में नुकसान हो गया और उसे बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी और तरह तरह के कष्ट उसके जीवन में आए। फिर थोड़े समय बाद ये दो दोस्त जो पहले के दोस्त थे फिर से मिले एक बार अचानक सड़क पे, तो दोनों को एक दूसरे की परिस्थिति के बारे में पता था। तो जो अमीर बन गया था उसने पूछा, अरे तुम केवल भगवत गीता के पीछे लगे हुए हो, ये हरे कृष्ण हरे राम के पीछे लगे हो, देखो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे व्यवसाय में कोई प्रगति नहीं हुई, कितने सारे कष्ट तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, और मेरी दशा देखो, मैं तो सुखी हूं, मैं कितना सुख मेरे जीवन में है, इतना सारा पैसा मेरे पास में है, गाड़ियां हैं, बंगला है, नौकर चाकर हैं, और देखो तुम कहते हो शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करने से तुम्हारी दशा देखो, और इन चीजों को करने से मेरी दशा देखो। तो ये बेचारे अब नए नए भक्त बने थे, थोड़े भ्रमित हो गए, तो जिनसे वो भगवत गीता सीखते थे उनके पास जाके मिले वो साधु जी से, कि देखिए साधु जी ऐसा है कि मैं मेरे मित्र को मिला, वो ऐसे कह रहा है, तो मेरा मन भी थोड़ा डावाडोल हो गया है, तो कृपया बताइए कि ऐसे क्या, मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, और भगवत गीता का पाठ करता हूं, आपके प्रवचन सुनने आता हूं, मैं नाम संकीर्तन करता हूं, और मेरी दशा देखिए, और वो देखिए कितने गलत काम कर रहा है, लेकिन कितनी प्रगति कर ली उसने समाज संसार में। तो साधु हंसने लगे, उन्हें कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें कर्म सिद्धांत समझाता हूं और भक्ति समझाता हूं, और कर्म सिद्धांत और भक्ति के बीच में जो संबंध है वो भी समझाता हूं। तो देखो तुमने किसान किस तरह से अनाज वो लोग रखते हैं देखा है, एक बहुत बड़ा पात्र होता है, और जैसे जैसे फसल कटती है वैसे वैसे किसान उस पात्र में अनाज को ऊपर से डालते रहता है, और नीचे से फिर वो फसल को निकालता है, जैसे जैसे उसके प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है घर में तो नीचे से अनाज निकालता है। तो ऐसे एक साल का अनाज जब डाल देता है उसके बाद दूसरे साल का अनाज ऊपर से और डालता है, ऐसे दो तीन सालों के अनाज जो है एक के बाद एक ऊपर ऊपर आते हैं। तो निकालता है वो कौन सा अनाज, जो पहले वर्ष का अनाज है। अब यदि पहले वर्ष का अनाज या फसल जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, दूसरे साल का अनाज अच्छा नहीं हुआ होगा, और तीसरे साल का अनाज बहुत ही बिगड़ा हुआ होगा, तो क्या होगा, जिस साल में फसल बिगड़ चुका था उस साल में भी वो व्यक्ति अच्छे अनाज को खा रहा है, क्योंकि जिस अनाज को वो इस समय खा रहा है वो सबसे नीचे वाला है, वो पहले साल का अनाज है, इसलिए इस साल फसल खराब होने के बाद भी अब जो वो खा रहा है वो अच्छा अनाज है, क्योंकि उसके दो साल पहले का फसल अच्छा था। अब यदि मान लो कि पहले साल में फसल खराब हुआ होता, दूसरे साल में अच्छा हुआ होता, तीसरे साल में बहुत अच्छा हुआ होता, परंतु जब वो अब फसल अपने घर के लिए लेता नीचे से, तो बिगड़ा हुआ अनाज उसे मिल जाता, हालांकि इस साल में फसल इतनी अच्छी हुई है, फिर भी क्यों, क्योंकि दो साल पहले या तीन साल पहले अनाज अच्छा नहीं निकला था। तो ठीक इसी तरह से वो साधु समझाने लगे उन्हें, हमारे कर्म के सिद्धांत कर्म चलते हैं। अब ये व्यक्ति है देखो, इसने अपने पूर्व जन्मों में और हो सकता है इस जन्म में भी थोड़े बहुत पुण्य तो किए होंगे, पूर्व जन्मों में भी किए होंगे, अब पूर्व जन्मों का फल वो भुगत रहा है, अच्छे कर्मों का फल भुगत रहा है, और पूर्व किए पुण्य कर्म जो होते हैं उनका फल सुख के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, सुविधाओं के रूप में आता है। तो अब यह व्यक्ति ऐश कर रहा है क्योंकि वो अभी क्या भुगत रहा है, वो अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलों को भुगत रहा है, अर्थात नीचे से अनाज ले रहा है ना, पहले के फसल वो काट रहा है अभी या प्रयोग कर रहा है, परंतु अब वो क्या कर रहा है, उसके कर्म कैसे हैं इस समय, वो अभी पाप ही पाप कर रहा है। तो अभी की जो फसल है उसकी वो बहुत बुरी है, तो आगे चल के ऐसे उसको कर्मों के फल मिलेंगे, बस उसको बहुत दंडित होना होगा प्रकृति के नियमों के द्वारा। तो वो कहने लगे, भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, भगवान के नियम जो हैं ये सही ढंग से चलते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुष्ट व्यक्ति को सुख मिलता है और अच्छे व्यक्ति को दुख मिलता है। तो उसने बात सुन ली, पर कहा कि महात्मा जी फिर ये बताइए कि ठीक है, उसने जो बुरे कर्म अच्छे कर्म किए थे पहले, उन कर्मों का फल उसे मिल रहा है, परंतु मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं फल मिल रहा, मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है। तो महात्मा हंसने लगे, कहने लगे कि देखो, तुमने भी तो कोई पूर्व जन्मों में पाप किए होंगे ना, यहां दुनिया में रहते हुए कोई साधारण व्यक्ति केवल पाप या केवल पुण्य नहीं करता है, हमारे जो कर्म होते हैं वो पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण होते हैं, कभी हम पाप करते हैं कभी पुण्य करते हैं, और कोई ज्यादा पाप करता है कम पुण्य करता है, कोई ज्यादा पुण्य करता है कम पाप करता है, परंतु पाप और पुण्य सभी लोग करते हैं। तो तुमने भी थोड़े बहुत पाप किए थे, किए होंगे, जैसे हर एक प्राणी हर एक मनुष्य करता है, तो तुम्हें वो पापों का फल इस समय मिल रहा है। तुम्हारी जो पुरानी फसल थी ना वो बिगड़ी हुई थी, तो पुराने फसल तुम्हें अब मिल रहे हैं, उसको तुम भोग रहे हो, परंतु अब तुम अच्छे कार्य कर रहे हो, अब तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, पापों पाप रहित जीवन जी रहे हो, इसलिए आगे चल के तुम्हारा भविष्य ये उज्जवल होगा, तुम भगवान के और भी करीब पहुंचोगे, चिंता नहीं करना, निराश नहीं करना, निराश नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे अनगिनत जन्मों के पाप बस इन थोड़े महीनों के भक्ति से सारे नष्ट हो चुके हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और फिर देखना। हाँ, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु हमें घबराना नहीं चाहिए कि अरे भाई हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे व्यवसाय में नुकसान हो जाएगा, समस्याएं आएंगी, नहीं ऐसे आवश्यक नहीं है। ये एक उपमा है, एक घटना है, एक कहानी है, जिसके द्वारा हम इन चीजों को समझ सकते हैं, सिद्धांतों को समझ सकते हैं। और भक्ति वो एक ऐसा पथ है जो कि हमारे कर्मों के बीजों को भी जला देता है, इसलिए आगे चल के फिर हमें कोई खतरा नहीं है, फिर आगे चल के हमारा जीवन सुख से भर जाता है, दिव्य आनंद से भर जाता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं और जब तक कि भौतिक शरीर है तो कुछ न कुछ कष्ट होना ही होना है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना ही इस तरह से की है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है, अशाश्वत जगत है, इसलिए कष्ट तो होना ही होना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है हे अर्जुन, कि हमें जान लेना चाहिए भली भांति कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये संसार के प्रमुख दुख हैं, और जब तक ये चार प्रकार के दुख रहेंगे संसार में सच्चा सुख नहीं मिल सकता हमें। जो बड़े बड़े संत होते हैं, शुद्ध भक्त भी होते हैं, आखिर ये शरीर तो उनका है अभी भी, इसलिए शारीरिक कष्ट तो आने ही वाले हैं। शुद्ध से शुद्ध भक्त के लिए भी शरीर के कष्ट आएंगे, मानसिक तनाव भी तरह तरह के आएंगे। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष के आयु में, जबकि वो वृंदावन में एक सन्यासी के रूप में रह रहे थे, वो अमेरिका चले गए अपने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने के लिए। उनके गुरु जी ने कहा था उनसे कि आप जाओ विदेशों में, और आप एक पढ़े लिखे हुए नौजवान हो, और आप अंग्रेजी भाषा में विदेशों में प्रचार करो, क्योंकि भारत की विडंबना ये है कि हम लोग विदेश से आई हुई चीजों का नकल करते हैं। जब तक विदेश से कोई बात नहीं आती या विदेशी लोग हमारी प्रशंसा नहीं करते, तब तक हम किसी चीज को अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए जाओ विदेश में प्रचार करो गीता भागवत का, उनको भक्त बनाओ, उनको यहां ले आओ, ताकि जो भारतीय लोग हैं वो समझेंगे कि उनके ही आंगन में कितना एक अनमोल रत्न है, जिसको भूलकर वो पाश्चात्य देशों की संस्कृति को और कांच के जो रत्न हैं, नकली रत्नों के पीछे वो भाग रहे हैं। और ये आदेश श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु ने दिया था जब प्रभुपाद जी की आयु लगभग 25-26 की थी, परंतु उस समय वो गृहस्थी थे, उनके छोटे बच्चे थे, व्यवसाय था। परंतु 60 साल की उम्र में उन्होंने सोचा था, वो भूले नहीं, मेरे गुरु का आदेश ऐसे था। फिर 70 साल की आयु में वो अपने गुरु के आदेशों का पालन कर सके, लगभग 50 साल बाद, और निकल पड़े और अमेरिका में जाके उन्होंने खूब प्रचार किया। वो रह सकते थे वृंदावन में, क्या समस्या थी उनके लिए? कोई समस्या नहीं थी। एक मंदिर में रह रहे थे, सुबह शाम भजन अच्छा हो रहा था, यमुना जी में जाके स्नान कर रहे थे, दिव्य वातावरण में रह जाते अपने अंत तक। परंतु नहीं, उन्होंने सोचा मेरे गुरु महाराज का आदेश का पालन करना है, भक्ति का आनंद केवल मुझे नहीं लेना है, मुझे सारे विश्व में इसको फैलाना है, और खास करके भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो इस समय केवल पश्चिमी देशों के, पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं, यहाँ के धर्म को भूल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मुझे जाना ही होगा। हालांकि मैं अभी वृद्ध हूं और मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, फिर भी मुझे जाना चाहिए। इतना अटूट विश्वास उनका था अपने गुरु के आदेश पर, भगवान की कृपा पर, कि वो निकल पड़े। एक टिकट उनको मिल गया जहाज के, और जब वो अमेरिका में पहुंचे, उनके पास केवल $7 थे। उस समय के हिसाब से $7 केवल 35-40 रुपए के बराबर थे। दो घंटे में खर्च हो सकते थे वो 35 रुपए या $7। और उनको ये पता नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। आजकल तो बहुत से भारतीय लोग विभिन्न देशों में रहते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत कष्ट उठाकर ऐसे बुढ़ापे में ऐसे खतरा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने जहाज में जाते जाते समुद्र में दो हृदय के दौरे पड़े उनको, फिर भी हौसला नहीं खोया उन्होंने, और वहां जाकर सबसे सस्ते से सस्ते स्थान में रह के किराए का कोई एक कमरा लिया, और वहां जाके फिर वो एक उद्यान में अपने करताल, ऐसे ही जो करताल होते हैं, इसको लेकर कीर्तन किया करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। और धीरे धीरे से लोग इकट्ठे होने लगे कि ये कौन व्यक्ति है, ये तो अमेरिकन दिखते नहीं है, कहाँ से आए हैं, स्वामी लगते हैं कोई। और फिर नौजवान लोग उनके पास आए, कीर्तन करने सुनने लगे, फिर वो भगवद गीता प्रवचन उन्होंने शुरू कर दी। इस तरह से चमत्कार जो हो गया, केवल एक साल में उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और उन्होंने कहा कि इस संघ की स्थापना करने का उद्देश्य केवल एक है कि दुनिया को संघ देना, सत्संग। तो संघ प्रदान करने के लिए संघ की आवश्यकता होती है। और केवल 12 वर्षों में जो चमत्कार उन्होंने कर दिखाया, दुनिया का भ्रमण 14 बार कर लिया, जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया, बड़े कई कई जगह में बड़े बड़े मंदिर हुए, कई जगह में छोटे छोटे मंदिर हुए, और फिर अपने विदेशी भक्तों को यहां पर ले आए और उनको दिखाया कि देखो, भारतीयों को दिखाया कि देखो, ये विदेश के लोग जब हमारे धर्म को स्वीकार कर सकते हैं तो हमें क्यों धर्म से दूर भागना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब ऐसे संघ की स्थापना कर रहे थे, संघ को बढ़ा रहे थे, रात को 12 बजे उठ जाते, रात को 10 बजे सोकर 12 बजे उठ जाते और 12 से 4 बजे तक सुबह वो अपने ग्रंथों के अनुवाद आदि करते संस्कृत से अंग्रेजी में, और फिर उनका सारा दिन ऐसे होता, प्रवचन कहीं दिया करते थे, भक्तों के साथ में बैठते थे, समस्याएं भी कई तरह तरह की होती थी, कई जगह पुलिस कहते थे कि इनको जेल में डालो भक्तों को, कई जगह तरह तरह के बाधाएं आती थीं। तो श्रील प्रभुपाद उस समय कहने लगे कि देखो, हमने इस संघ की स्थापना की है सत्संग प्रदान करने के लिए, परंतु परिणाम ये हो रहा है कि इतने तेजी से ये सब जगह फैल रहा है, परंतु इससे कष्ट भी हमें हो रहा है। मुझे इतने सरदर्द होते हैं ये सब सारे बड़े संघ के विकास के लिए, इसकी वृद्धि के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबका कल्याण हो, कृष्ण भक्ति का संदेश जगह जगह दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए। हिमालय में ऐसे कई योगी हैं जो एकांत स्थान में अपनी साधना भजन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, उनको कभी सरदर्द नहीं होता है, परंतु मुझे सरदर्द होता है, क्योंकि मैं जन कल्याण के कार्य में लगा हुआ हूं और किसी भी संघ को संभालना ये आसान नहीं है, किसी भी लोगों के समूह को संभालना आसान काम नहीं है, एक परिवार को संभालना आसान नहीं है, तो जब एक भक्तों के समूह को संभालना, किसी देश को संभालना, ये तो बहुत कठिन बात है। फिर भी उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया हम सब के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य था सारी दुनिया को सत्संग मिले, ताकि सारी दुनिया कृष्ण भगवान के शरण में आके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाए। और आज इस संस्था के शाखाएं प्राय हर एक देश में है, और कई जगह ऐसे माहौल है कि वहां कानून की दृष्टि से वर्जित है अनेक देशों में इस धर्म का प्रचार करना और पालन करना, फिर भी अपने जान को खतरे में रख के भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कई बार उदाहरण हुए हैं कि लोगों को मृत्यु दंड भी मिला है। अफ्रीका में ऐसे हुआ, जब हम मायापुर में अभी अभी थे तो ऐसे भक्त के बारे में हम सुन रहे थे जिनको की गोली से सरकार ने मार दिया, क्योंकि वो महिला थी, महिला वो अपनी भक्ति कर रही थी, और उस देश के लोगों को, अफ्रीका के उस देश के लोगों को भगवद गीता के बारे में सुना रही थी, और सरकार के कोई अधिकारी थे, उनको अच्छा नहीं लगा, गोली से मार दी उनको। और रूस देश में जब वो साम्यवाद देश था, आज तो साम्यवाद नहीं है, उस समय में भी कईयों को जेल में भर्ती कर दिया गया, पागल खाने में रखा गया, तरह तरह से उनको कष्ट दिया गया। तो भक्तों ने कितनी सारी तपस्या की है इस भक्ति के आंदोलन को सब जगह फैलाने के लिए, और वहां रूस देश के अधिकारियों ने भी उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग ना मांस खाते हैं, ना कुछ, इतना सख्त इनका जीवन है, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, नाम का जप करते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं लेते हैं, इनकी श्रद्धा इनकी निष्ठा कहां से आ रही है, उनको भी आश्चर्य हो जाता था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की कल्पना थी कि ऐसे संघ हो जिसके अन्य कोई उद्देश्य न हो, एक ही उद्देश्य और वो है दुनिया को सत्संग दिलाना। अब इस संघ की शाखाएं अनेक हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर, यहाँ अहमदनगर के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा में आकर। पहली बार मैं यहाँ इस शहर में आ रहा हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं सत्संग के लिए, ये देखकर भी मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के सत्संग के कार्यक्रम ऐसे बढ़ते रहें, अधिक से अधिक संख्या में लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगे रहें और इस तरह से सारे शहर का कल्याण हो, सबके बीच में प्रेम की भावना हो भगवान कृष्ण के भक्ति के आधार पर। और फिर धीरे धीरे केवल अहमदनगर क्यों, अन्य जितने भी स्थान हैं, गांव हैं, पास के शहर हैं, वहां भी फैले, सारे दुनिया में ऐसे फैले। श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन उन्होंने किया। ये हरिनाम संकीर्तन ही इस कलयुग का युग धर्म है। सत्य त्रेता द्वापर कल, ये चार युग होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और हर एक युग में अलग अलग धर्म होते हैं जिनका पालन करने से आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का एक साथ में आकर, इकट्ठे होकर, संग में आकर कीर्तन करना। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने कलि संतरण उपनिषद का एक मंत्र बतलाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस मंत्र का उच्चारण करके जप के रूप में, कीर्तन के रूप में हम हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत कर सकते हैं। तो आप सब यहाँ आए इस शाम को, आपको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। आप अन्य कार्य भी कर सकते थे परंतु अपना मूल्यवान समय निकालकर आप आए यहाँ पे, हम आपके आभारी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ध्यान से और शांति से आप सबने प्रवचन सुन लिया। हरे कृष्ण। तो आपके ऐसे निवेदन है कि कोई प्रश्नोत्तर भी हो जाए तो बिल्कुल सही। आप में से यदि किसी को प्रश्न पूछने हैं तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। दूसरा माइक है क्या साथ में? ठीक है, तो यदि आपके कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, माइक आपके पास में पहुंच जाएगा।
प्रश्न मराठी मध्ये, हिंदी मध्ये, इंग्लिश मध्ये, कोणत्याही भाषेमध्ये विचारू शकता। कोई भी भाषा में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, विशेष करके नयों में से, नए लोग हैं उसमें से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।
एक पहला प्रश्न आया है। प्रश्न है, इतने सारे सत्संग निर्माण हो चुके हैं, वे भी भजन कीर्तन प्रवचन प्रसाद सबको महत्व देते हैं, हम लोगों को हमारे इसका मतलब क्या? आपका प्रश्न है कि हम यहीं क्यों आए, शायद ये प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहीं आना है। ये आखिर ये भक्ति का पथ जो है, देखिए स्वेच्छा का पथ है ना, ये तो स्वेच्छा से होता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने आपको बता दिया, अभी तुम चयन कर लो अर्जुन, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है। तो यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा है, ये हम सब के लिए है, सारे नगर के निवासियों के लिए है, और कोई भी आ सकते हैं, किसी को कोई बाधा नहीं है, और न कोई इसमें कर है, न कुछ, हर एक व्यक्ति आ सकते हैं। तो बस बात इतनी ही है कि यहाँ जो उपदेश दिया जाता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, वो भगवान श्री कृष्ण के वाणी को दोहराया जाता है, कोई और टीका नहीं की जाती। भगवत गीता को उन्होंने कहा भगवत गीता जैसे है वैसे यथा रूप, मतलब भगवत गीता को अपने तरह से फिर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वैसे ही हम दोहराते हैं, श्लोकों के कोई अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं, अपने मन माने ढंग से अपने मानसिक चिंतन से कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल के हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही उस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ये इस पुस्तक की विशेषता है और ये इस संघ की विशेषता है। और यहाँ पे नाम संकीर्तन पे बहुत जोर दिया जाता है क्योंकि यही युग धर्म है, तो इसलिए आप सब को आमंत्रण है, आपका ही समझ के आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, दूसरा प्रश्न पीछे है। आपने दो मित्रों की कहानी बताई, लोगों को अभी आप अच्छा कर्म बोलेंगे कि अभी आप अच्छा कर्म करो भविष्य उज्जवल होगा, वो बोलते हैं आगे किसने देखा है, तो क्या उत्तर दें? भविष्य भले हमने नहीं देखा है परंतु भविष्य होगा इतना तो हम जानते हैं ना, छोटा बच्चा भी जानता है कि एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो भविष्य है सभी के लिए है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति, कि जिस तरह से इसी जीवन में बाल्यवस्था से हम युवावस्था में जाते हैं, हमारा शरीर बदलता है, युव अवस्था से वृद्ध अवस्था में हम जाते हैं, हमारा शरीर फिर बदल जाता है, और बाल्यवस्था और वृद्धावस्था के शरीर जो हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी हम जानते हैं हम हैं एक ही हैं, इस जीवन में भी हम शरीर बदल रहे हैं। तो जिस तरह से इसी जीवन में हम शरीर बदलते रहते हैं ठीक उसी तरह है, श्री कृष्ण कहते हैं जब इस शरीर का अंत होगा तो हमें एक दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो यह है पुनर्जन्म। तो बहुत ही सरल ढंग से उदाहरणों के साथ उपमाओं के साथ श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें ऐसे संदेश देते हैं। तो भविष्य है, यदि भविष्य है इसका मतलब है कि भूतकाल भी था, इस जन्म के पहले भी हमारा कोई जन्म था, तो ये हम कैसे जान सकते हैं? एक सही विषय तो बहुत बड़ा है परंतु संक्षेप में मैं कह दूं क्योंकि आपने प्रश्न किया है। अब ये बताइए कि जितने भी बच्चों का जन्म होता है इनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं जन्म से, कोई होते हैं जिनकी कोई मानसिक समस्या होती है, कई बच्चों का जन्म होता है उन बड़े स्वस्थ रूप में जन्म लेते हैं, कई होते हैं जिनका जन्म लेते ही वो अपंग होते हैं, कोई ऐसे शरीर में दोष रहता है, कोई बच्चे गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, कोई बच्चे धनी परिवार में जन्म लेते हैं, जन्म से ही कोई बच्चे कुरूप होते हैं, कोई बच्चे सुंदर होते हैं, बचपन से ही कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके संगीत विद्या में वो एक झुकाव रहता है, किसी का नहीं रहता। तो ये इतनी तरह की जो विविधता है वो क्यों होती है? उन बच्चों ने इस जन्म में क्या किया है कि एक बच्चे को धनी परिवार में जन्म मिले, दूसरे को गरीब में, कि एक अपंग निकले दूसरा स्वस्थ निकले? तो जब तक हम ये नहीं स्वीकार करेंगे कि पिछला कोई जन्म था जिसमें हमने तरह तरह के कर्म किए थे और उन कर्मों के अनुसार हमें फल इस जन्म में मिल रहे हैं और भिन्न भिन्न शरीर हमें धारण करने पड़ रहे हैं, तो जब तक हम कर्म सिद्धांत और पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात नहीं करते हैं और आत्मा की बात नहीं करते हैं तब तक इन बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो यदि लोग आपसे ऐसे प्रश्न करें तो ऐसे ही उदाहरणों के साथ आप उनको समझा सकते हैं और उनको प्रभुपाद जी की किताबों किताब दे सकते हैं, जिनसे कि वो और पढ़ के ज्ञान प्राप्त करें। और कोई प्रश्न है आपके, बिना संकोच की आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा मन भी महान शत्रु है, तो इस महान शत्रु की वजह से हम जप करते समय बहुत विचलित होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के विचार तर्क वितर्क आते हैं, मन विचलित करता है, बहुत सताता है, जप में ध्यान नहीं लगता, तो इस महान शत्रु को कैसे वश में किया जा सकता है?
तो मन को वैसे कैसे वश किया जा सकता है, ये आपका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से ऐसे कहा था, जब अष्टांग योग की पद्धति का वर्णन वो कर रहे थे, और अष्टांग योग की पद्धति को सुनने के बाद, जो कि मन को नियंत्रित करने के लिए रास्ता है, एक रास्ता है, तो अर्जुन ने कहा संभव नहीं है, ये मन जो है ये इतना वेगवान है, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण आप कह रहे हैं कि हमें मन को नियंत्रित करना चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि ये असंभव है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है, जिद्दी है, इसलिए इस मन को वश में लाना ये तूफान को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो कृष्ण कहते हैं अवश्य तुम जो कह रहे हो वो सही है अर्जुन, कि मन को वश में करना आसान नहीं है, फिर भी ये संभव है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागीण च गृह्यते, असंशयम मनोर बाहुर महाबाहुर। वो कहते हैं असंशय तुम जो कह रहे हो वो सही है, मनो निर्गणम वचत, वो कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही है कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, परंतु संभव है। कैसे संभव है? अभ्यासेण और वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से ये संभव है। किन चीजों का अभ्यास करना होगा हमें? आध्यात्मिक जीवन के कई ऐसे कार्य हैं, जैसे भगवान कृष्ण के नामों का जप करना, उनके नामों का कीर्तन करना, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का पाठ करना, प्रवचन आदि सुनना, तो ऐसे तरह तरह के अभ्यास हैं, क्रियाएं हैं जिनको हमें करना चाहिए, बार बार प्रतिदिन करना चाहिए। और वैराग्य, ये वैराग्य का क्या अर्थ है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम सबको संन्यास लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैराग्य का मतलब है इस संदर्भ में कि हमें उन चीजों को त्यागना चाहिए जो हमारे भक्ति के लिए हानिकारक हैं। विशेष रूप से चार चीजों को हमें त्यागना चाहिए जो कि बहुत ही हानिकारक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और वो हैं मांसाहार, मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ और व्यभिचार। इन चार चीजों को हम त्यागेंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, और साथ साथ आध्यात्मिक क्रियाओं को, भक्ति के कार्यों को हमें करते रहना चाहिए, फिर धीरे 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 से मन नियंत्रित हो जाएगा। समय लगता है, जीवन भर हमें अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि अब हम एक साल दो साल पांच साल से अभ्यास कर रहे हैं तो मन नियंत्रित हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कितने जन्मों से हमने मन को इतनी चोट दे रखी है कि अचानक यदि हम मन को नियंत्रित करना चाहें तो वो संभव नहीं होता। जीवन भर हमें तपस्या करनी होगी, अभ्यास और वैराग्य दोनों का पालन करना होगा, परंतु निश्चित ही धीरे धीरे से मन वश में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब मन को हम समर्पित करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य हमारे मन को काबू में कर देंगे। हमें जन्म के बारे में बताइए कि जन्म कैसे दुख है। हाँ देखिए, जब हमारा जन्म होता है बाकी सब लोग हंसते हैं खुशी से, लेकिन हम रोते रोते आते हैं ना, सही है ना। हम रोते हैं और माँ भी बहुत रोती है। माँ और बच्चे जो होते हैं दोनों खूब रोते हैं, बाकी सब लोग हंसते हैं कि चलो मिठाइयां बांट रहे हैं, चलो बहुत खुशखबरी है। लेकिन जो दो सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, बच्चा और माँ, दोनों रो रहे होते हैं बच्चे के जन्म के समय। यदि वो खुशी का अनुभव होता माँ बच्चे के लिए, क्या दोनों रोते हैं? कितना दर्द होता है। आप में से माताएं बहुत हैं, आपको जन्म का अनुभव है कि कितना दर्ददायक होता है ये, और बच्चे के लिए भी कितना कष्टप्रद है। बच्चा तो पहले अपने माँ के गर्भ में रहता है और अब उसे बाहर आना पड़ता है, तो बहुत कठिनाई होती है दोनों को। अच्छा, ये आपकी लिपि ठीक समझ पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है यहाँ पे? स्पष्ट कृपया लिखिए या तो बोल दीजिए। हाँ पढ़िए।
क्या हरे कृष्ण हरे बोल, क्या इस मार्ग से कृष्ण प्राप्ति होगी? हम भगवान कृष्ण सेवा बालपन से करते हैं। मैं भक्त श्री कृष्ण चाहिए, ठीक है मुझे। लेकिन इस्कॉन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी का यही नाम राम प्लस कृष्ण, ये दोनों भिन्न नाम है या एक? राम और कृष्ण एक है कि अलग है, ऐसा प्रश्न।
एक भी है अलग भी है। कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही परम सत्य हैं। परंतु वही श्री कृष्ण भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए। वही श्री कृष्ण जब मर्यादा पुरुषोत्तम होकर प्रकट होना चाहते हैं तो श्री राम के रूप में आते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों में जाते समय अलग अलग वस्त्र पहनता है, जब वो दफ्तर जाता है तो एक तरह के वस्त्र पहनता है, जब मंदिर में जाता है तो दूसरे तरह के वस्त्र पहनता है, जब कोई खेल खेलने जाता है तो तीसरे तरह के वस्त्र पहनता है, शादी में जाता है तो हो सकता है और कोई तरह का वस्त्र पहनता है। है वो व्यक्ति एक ही, हो सकता है दिखने में हमें लगे कि भाई ये तो सूट वाले आदमी थे, ये इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, परंतु है व्यक्ति एक ही। उसी प्रकार से श्री कृष्ण श्री राम हैं एक ही, परंतु भिन्न रूप भिन्न आकार धारण करते हैं अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए, भिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए। इसलिए श्री कृष्ण श्री राम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये भी जरा पढ़ लीजिए।
भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य इच्छा नहीं होने पर भी पाप कर्म में लग जाता है, और भगवान कहते हैं कि मनुष्य काम उत्पन्न होने से पाप कर्म करता है। परंतु मेरा प्रश्न है कि अर्जुन का काम तो युद्ध करके पाप नहीं करना चाहता था, तो यह अर्जुन का प्रश्न हमें समझाइए।
हाँ, अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछना चाह रहे थे, केवल अपने बारे में नहीं सारे दुनिया के बारे में वो पूछ रहे थे, कि कई बार ऐसे देखा जाता है कि जानते हुए भी कि ये काम अच्छा नहीं है और मुझे नहीं करना चाहिए, और मेरी इच्छा है कि मैं ये काम नहीं करूं, फिर भी मैं कर बैठता हूं। ऐसे होता है ना, कभी कभी होता है, तो ऐसे क्यों होता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, ये केवल काम से उत्पन्न होता है। जो भौतिक वासनाएं रहती हैं वो हमारे हृदय में इतनी सख्ती से बैठी हुई हैं कि उनको निकालना आसान नहीं है। ऐसे बताया जाता था कि पूर्व युगों में, सत्ययुग में, जैसे दैव और असुर ये दोनों अलग अलग लोकों में, अलग अलग ग्रहों में रहा करते थे। जब द्वापर त्रेता युग आया तो जैसे देव और असुर ये दो अलग अलग देशों में रहने लगे एक ही लोक के ऊपर, जैसे रावण लंका में और राम यहां अयोध्या में, द्वापर युग में हुआ ये कि देव और असुर एक ही देश में रहने लगे परंतु अलग अलग शहरों में, अर्थात हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में। हस्तिनापुर में कौरव रहा करते थे और इंद्रप्रस्थ में पांडव। परंतु कलयुग में क्या होता है, कलयुग में देव और असुर दोनों ही एक ही हृदय में निवास करते हैं। तो हमारे हृदय में ये दोनों की सदैव प्रतियोगिता चलती रहती है। दोनों अपने मुख को ऊपर उठाते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कभी कभी हम बुरे काम कर लेते हैं और जो देव है वो कहता है नहीं करो नहीं करो, परंतु असुर है उस समय ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो देव को दबा देता है, हम बुरा काम कर देते हैं। कभी कभी हमारा अच्छा जो देव है हमारे हृदय में वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो कहता है, वो दबा देता है असुर को, नहीं नहीं ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि संग के द्वारा, अच्छे संग के द्वारा हमारे अंदर जो देव बैठे हैं, देव वृत्ति है, उसे हम पोषित करें, शक्तिशाली बनाएं, और असत संग से दूर रह के हमारे हृदय में जो असुर है उसको और हम कमजोर बनाएं। इस तरह से फिर हमारी दिव्य वृत्ति होगी। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा इन दोनों का वर्णन करते हैं। तो हमें दैवी संपद को बढ़ाना चाहिए और आसुरी संपद को हमें नष्ट करना चाहिए, और ये सत्संग के द्वारा अवश्य हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हम हृदय से महाराज को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि महाराज ने इतना अच्छा, एकदम सिंपल तरीके से भगवान को कैसा जानना चाहिए, कौन व्यक्ति नहीं जान सकता है, और प्रभुपाद ने ये जान लोगों को जानकारी देने के लिए कितना कष्ट उठाया। केवल 2 घंटा प्रभुपाद सोते थे। प्रभुपाद जी है ये संस्था के संस्थापाचार्य, और उनके ही परंपरा में परम पूज्य महाराज जी जो आए हैं हमारे बीच में, तो वो भी वही बता रहे। और प्रवचन के बीच में भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो महाराज ने इतना, भक्तराम सुंदर महाराज ने इतना अच्छा सुंदर बताया कि ज्ञान में अलग अलग होता है, लेकिन क्या चूज करना है आप ही देख सकते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तो इतना सिंपल तरीके से हमें महाराज जी ने समझाया, तो 3 बार हरि बोल बोल के उनको धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो महाराज को तो हम कुछ गिफ्ट देने के लिए हमारे पास नहीं है। और दूसरा भी चीज है, यहाँ पर जो साउंड सिस्टम हम देख रहे हैं, ये साउंड सिस्टम राहुरी के भक्तों ने स्पॉन्सर किया है, उनको भी केवल 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बाकी लोगों को हम गिफ्ट बांटेंगे। तो आज का जो प्रसाद स्पॉन्सर है 4 लोगों ने किया है, उनका बर्थडे है, उसके अवसर पर उन्होंने किया है, तो मैं एक एक नाम पुकारूंगा, कृपा करके यहाँ पर आना है और महाराज जी से गिफ्ट स्वीकार करना है। तो प्रथमेश देवधर से, जहां पर भी हो आ गया ही, प्रथमेश देवधर से, राधारानी, राधारानी, ये राधारानी का बर्थडे है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और चैतन्य भेरे, या अपने, और हरि बोल कर कविता, कविता हाथ मलकर जो भी आ गया ही,